आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब तेजी से गामजन है और इस मकसद को हासिल करने में इस्लाहात अहम रोल अदा कर रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत को एक उमंगों वाला, खुद कफील और पुरेतमाद मुल्क बनाने के लिए हर रियासत की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बरूएकार लाना चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतजामिया मुजाहिरों के मामले पर हमले करती है तो अमरीका और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। इस मुल्कगीर बेचैनी में अब तक मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो चुकी है। शिमाली भारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में वडोदरा में पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए 301 रन का ताकुब करते हुए विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारत की पोजीशन मजबूत कर दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक बहुत बड़ी आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान एक ऐसी यकीनी सूरत हाल के दौर से गुजर रहा है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब मोदी राजकोट में कच्छ और स्वराष्ट्र खित्तों से मुतालिक दरख्शां गुजरात खित्ते की दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और इस मकसद को हासिल करने में इस्लाहात अहम रोल अदा कर रही हैं। वजीर आजम ने सरकर्दा सनतकारों पर जोर दिया कि वो भारत के स्वराष्ट्र और कच्छ खित्ते में सरमायाकारी करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के साथ साथ सनत के लिए तैयार एक अफरादी कुव्वत आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुजरात का स्वराष्ट्र कच्छ खित्ता मसनूआत साजी, माहौल के लिए साजगार तरक्की और नकल हमल का एक बुनियादी मरकज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कच्छ में 30 गीगावाट का माहौल के लिए साजगार तवानाई का दुनिया का सबसे बड़ा पार्क तैयार किया जा रहा है।
सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा।
खित्ते की यकसर तब्दीली को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मोरबी, जामनगर, राजकोट सनती इलाके को इसकी तरक्की, हुनरमंदी और आलमी राब्तों के सबब मिनी जापान का नाम दिया गया है। उन्होंने बंदरगाहों की अहमियत वाली तरक्की, माहीगीरी और बुनियादी ढांचे के मैदान में सरमायाकारी के बड़े मौकों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है, जिसे सनत के लिए तैयार एक अफरादी कुव्वत और जीएसटी, आईटी, बीमा, मेहनत और न्यूक्लियाई तवानाई जैसे शोबों में अगले दौर की इस्लाहात से मदद मिली है।
अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमई को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है।
वजीर आजम ने इस मौके पर राजकोट में स्वराष्ट्र के 7 जिलों में 13 माहौल दोस्त स्मार्ट सनती इलाकों का वर्चुअल वसीले से आगाज किया और तिब्बी आलात के एक खसूसी पार्क का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मुकेश अंबानी, करण अडवाणी और बीके गोयंका समेत मुमताज सरकर्दा सनतकारों ने शिरकत की। इस मौके पर भारत के अरबपति ताजिर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया का इजहार किया। ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में दरख्शां गुजरात के 20 कामयाब साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद की गई। उन्होंने वजीर आजम मोदी की सताइश करते हुए कहा कि आजाद भारत की तारीख में मुल्क में कभी इतनी ज्यादा पुरुमीदी और दरख्शानी नहीं पाई गई जैसा कि आज पाई जाती है। भारत के अरबपति ताजिर और वेल्सपन वर्ल्ड के बानी और चेयरमैन बालकृष्ण गोपीराम गोयंका ने खासतौर पर कहा कि कच्छ खित्ता दुनिया का देसी कपड़ों की कंपनियों का सबसे बड़ा मरकज कहलाएगा। उन्होंने गुजरात को जदीद तरीन शक्ल देने पर वजीर आजम की कोशिशों, विजन और क्यादत को सराहा। इससे पहले गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर आजम ने आज दोपहर राजकोट में दरख्शां गुजरात तिजारती नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। 18,000 मुरब्बा मीटर पर मुनक़िद की गई ये अजीम नुमाइश तरक्की और इख्तिरा की एक अहम नुमाइश है। वजीर आजम मोदी ने सुबह के वक्त तारीखी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की और गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पटन साहिली कस्बे में सोमनाथ मंदिर के लाफानी जज्बे का जश्न मनाया। ये तकरीब महमूद गजनी के हाथों सन 1026 में किए गए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िद की गई है। जनाब मोदी ने इस मौके पर शौर्य यात्रा की क़यादत की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कल से भारत के दो दिन के दौरे पर होंगे। चांसलर मर्ज का भारत का ये पहला सरकारी दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर का खैर मकदम करेंगे। दोनों रहनुमा भारत जर्मनी कलीदी साझेदारी के मुख्तलिफ पहलुओं में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे, जिसको गुजश्ता बरस 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शाम गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के आखिरी सेक्शन का इफ्तिताह किया, जो सेक्टर 10A को महात्मा मंदिर से मिलाएगा। 7.88 किलोमीटर की यह पट्टी, जिस पर 7 स्टेशन हैं, महात्मा मंदिर को मोटेरा स्टेडियम से मिलाएगी और अक्षरधाम, LDRP कॉलेज, गिफ्ट सिटी और गांधीनगर जैसे अहम इलाकों तक रसाई में बेहतरी लाएगी। कल वजीर आजम गुजरात के अपने दौरे के तीसरे दिन अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा साबरमती आश्रम भी जाएंगे और बैन अलाक्वामी पतंग फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत को एक पुरेतमाद, हौसले से पुर और खुद कफील मुल्क बनाना चाहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मकसद के हुसूल के लिए हर रियासत को अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूएकार लाना चाहिए। जनाब शाह तिरुवनंतपुरम में न्यू इंडिया न्यू केरला कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब शाह ने आयुर्वेद, इत्तिलाती टेक्नोलॉजी, सियाहत और खेलकूद जैसे शोबों में केरला की कारकर्दगी को सराहा। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि रियासत को BJP की सरबराही वाले NDA के तहत नई क्यादत की जरूरत है, ताकि बकौल उनके LDF और UDF सरकारों की वजह से तारी सियासी जमूत पर काबू पाया जा सके।
यहाँ पर UDF, LDF, फिर LDF, UDF, ये जो क्रम चला है उसने पॉलिटिक्स में एक प्रकार की स्थगितता लाने का काम किया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूँ एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और NDA ही दे सकता है।
सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुतालिक वजीर आजम के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संग मील तय किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसका आगाज किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वजीर आजम के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है और ऐसा बरवक्त निगरानी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और दीगर अवामी शिकायत का इजाला करके किया गया है। ये प्लेटफॉर्म इमदाद बाहमी से मुतालिक विफाकियत की मिसाल पेश करता है और मरकज रियासतों और मरकजी वजारतों को एक वाहिद डिजिटल राबता फराहम करता है। आज इस खसूसी सीरीज के तहत हमारे नमा निगार ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत की कौमी शाहराह 56 के लखनऊ सुल्तानपुर सेक्शन को 4 लेन वाला बनाए जाने का जायजा लिया।
कौमी शाहराह नंबर 56 के 127 किलोमीटर से ज्यादा लखनऊ सुल्तानपुर सेक्शन को 4 लेन वाला बनाया जाना वस्ती और मशरकी उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाए जाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे 4 मई 2016 को 2016 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने की मंजूरी दी गई थी। ये कॉरिडोर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों से होकर गुजरता है। वजीर आजम ने 25 अप्रैल 2018 को प्रगति मीटिंग में इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया था। जायजे के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी गई थी कि वो तेजी से जमीन हासिल करे और बिला ताखीर मुआवजा तकसीम करे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
BJP ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPEC के दफ्तर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की मुबैना दखलंदाजी की नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने आईपैक के दफ्तर जाने के वजीर आला के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि ये न तो टीएमसी का दफ्तर है और न ही किसी पार्टी लीडर की रिहायशगा। जनाब प्रसाद ने यह भी कहा कि मगरबी बंगाल असेंबली अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के मोटर गाड़ियों के काफिले पर कल पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया।
कल हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के कारवां पर हमला हुआ, पुलिस रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की गई। ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है।
भारतीय खलाबाज और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज कहा है कि नौजवान मुल्क का असल सरमाया है। जनाब शुक्ला दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में इजहार ख्याल कर रहे थे। नौजवानों को कामयाबी के लिए कोशिशें जारी रखने की तलकीन करते हुए ग्रुप कैप्टन ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पुरअज्म रहें और खुद के बारे में शकूक व शुभात से बचें। भारतीय खलाबाज ने नौजवानों को न डरने वाला बताया।
इतना कॉन्फिडेंट और इतना एक्साइटेड यूथ है हमारा जो हमें विकसित भारत 2047 तक लेके जाएगा। 41 साल लगे किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट को भेजने में इंडिया में, लेकिन इस बार बहुत कम समय लगेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये हम सक्सेसफुली अकम्पलिश कर पाएं और इसी की तरफ मेहनत होनी चाहिए कि जो हम सपने बच्चों को दिखा रहे हैं उनको पूरा भी करना है।
जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में दो सरहदी जिले राजौरी और पुंछ को कश्मीर वादी में शोपियां से जोड़ने वाली एक मुतबादिल कौमी शाहरा तारीखी मुगल रोड को आज मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। खराब मौसम और सड़क को खोले जाने की कार्रवाई के सबब ये सड़क गुजश्ता 7 दिन से बंद थी। गैर मुल्की सरमायाकारों ने इस महीने अब तक भारतीय हिस्से से 11,789 करोड़ रुपए निकाले हैं। आधारशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों ने 2026 के पहले दो हफ्ते में इंडियन डेट जनरल लिमिट में 593 करोड़ रुपए लगाए हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने आज खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ईरान में जारी एहतजाज के मामले पर इस्लामी जमहूरिया पर हमले करेगा तो अमेरिकी फौज और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। स्पीकर कलीबाफ का यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद सामने आया है कि अगर हुक्काम ने मुल्कगीर एहतजाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया तो ईरान पर हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमरीकी इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज के पीछे उसका हाथ है। इस दौरान ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्कगीर एहतजाज को आज दो हफ्ते से ज्यादा हो गए। उधर अमरीका में कायम इंसानी हकूक के कारकुनों की न्यूज एजेंसी के मुताबिक एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 200 से ज्यादा लोगों की जाने गई है। शिमाली भारत में सर्दी और घने कोहरे में मजीद इजाफा हो सकता है। भारत के महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के लिए रेड अलर्ट जबकि उत्तर प्रदेश मशरकी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कल के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर दिल्ली हरियाणा सौराष्ट्र कच्छ और बिहार के कुछ इलाकों के लिए अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मर्दों के क्रिकेट में न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 301 रन के निशाने का ताकुब करते हुए भारतीय टीम ने 48 ओवर्स में 6 विकेट पर 289 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के वडोदरा स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए हैं। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स का मुकाबला नवी मुंबई से जारी है। नवी मुंबई की डॉक्टर डीआई वाटल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जारी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब तेजी से गामजन है और इस मकसद को हासिल करने में इस्लाहात अहम रोल अदा कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को एक उमंगों वाला खुद कफील और पुरेतमाद मुल्क बनाने के लिए हर रियासत की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बरूकार लाना चाहिए। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतजामिया मुजाहिरों के मामले पर हमला करती है तो अमरीका और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। इस मुल्कगीर बेचैनी में अब तक मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो चुकी है। शिमाली भारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।